हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम के ये सातवें अध्याय से एक महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो सातवां अध्याय है, इसमें भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश श्रीमद् भागवतम में पहली बार हो रहा है, और शास्त्रों का प्रधान उद्देश्य ये है कि हमें इस दुनिया में कार्य कैसे करना यह सिखाना। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताता है आपको ऐसे खाना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। तो डॉक्टर का प्रधान ज्ञान जो हमें दिया जाता है वह ये कैसे हमें कार्य करना चाहिए ताकि हम ठीक हो जाए। तो उसी तरह से जब हम दुनिया में जीते हैं तो किस तरह से कार्य करना है, यह भगवान जो परम डॉक्टर है वह हमें शास्त्र के माध्यम से बताते हैं। और इस जगत में कार्य कैसे करना है यह बहुत जटिल है। क्योंकि क्यों जटिल है? क्योंकि एक स्तर पे तो सारे जीव जो है आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन कार्यों में लगे रहते हैं। जो मानव है, मानव को यह बुद्धि होती है कि जिससे कि वो इन शारीरिक कार्यों से ऊंचा और कुछ भी कर सकता है। तो जो नैतिक बुद्धि है वह केवल मानव में होती है, क्योंकि जो जानवर है वह अपने शरीर के जो इच्छाएं होते हैं, शरीर के जो प्रक्रियाएं होते हैं, उनके अनुसार ही कार्य करते हैं। तो मानव को क्योंकि विवेक बुद्धि है, नैतिक चेतना है, इसीलिए यह उचित है या अनुचित है यह समझ सकता है और फिर उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो इस अध्याय में बताया जा रहा है कि कैसे एक आदर्श भक्त जो है, जो अर्जुन, वो कैसे सारे जो पर्याय है उनका अच्छी तरह से निचोड़ करके फिर एक उचित कार्य चुनते हैं। तो अभी तक जो श्रीमद् भागवतम में पार्श्व भूमि चल रही है, तो पहले अध्याय में जो है प्रार्थनाएं आती है, भागवतम की महिमा बताई गई है, और फिर उसके बाद में कैसे जो ऋषिगण होते हैं वो शौनक आदि ऋषिगण जो है वह सुत गोस्वामी को सवाल पूछते ये बताया गया है। उसके बाद में दूसरे अध्याय में प्रधान प्रश्नों का जवाब है। तीसरे अध्याय में जो भगवान श्री कृष्ण सर्व अवतारों के श्रेष्ठ है, जिनके बारे में दशम स्कंद में आगे बताया जाएगा, वो सब अवतारों की एक झलक दी गई है और भगवान कृष्ण को सबका स्रोत बताया गया है। और फिर जो शौनक आदि ऋषिगण हैं उनके मन में सवाल होता है कि अगर ये महान ज्ञान है भागवतम का, वो उसका उगम कैसे हुआ? तो उसका ये ज्ञान तो सनातन है और भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, पर जो भागवतम ग्रंथ का संकलन जो है वो चौथे से छठवें अध्याय में उसका इतिहास बताया गया है। तो उसमें नारद मुनि कैसे व्यासदेव को उपदेश देते हैं ये बताया गया है, और फिर उसके बाद में बताया गया है कि नारद मुनि का उपदेश सुन के फिर व्यास देव जो है वह ध्यान में जाते हैं। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम चितदपाश्रयम्, तो ऐसे बताया गया है। वो जब ध्यान में जाते हैं, वो ये इसी अध्याय के चौथे, पांचवें, छठे, सातवें श्लोक में आता है उनका ध्यान, और उस ध्यान में जो दृष्टि मिलती है उसके बारे में बताया गया है। तो फिर जब वे ध्यान में जाते हैं और देखते हैं एक ऐसे जीवात्मा माया के वश में है और भगवान माया के परे है, तो जीवात्मा माया के परे कैसे आ सकता है? भगवान के शरण में जाके। तो भगवान यहाँ पे है, माया यहाँ पे है, जीवात्मा यहाँ पे है, जीवात्मा बद्ध है। सो अनर्थोपमम साक्षात भक्ति योग मधोक्ष, जो जीवात्मा अगर भगवान की भक्ति करेगा तो निकल जाएगा उसमें से। और उसके बाद में एकाएक ऐसे लगता है कि अचानक द्रोण के जो पुत्र है अश्वत्थामा, वह कैसे दौड़ रहा है और उसको पकड़ने के लिए अर्जुन और कृष्ण उसके पीछे जा रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि ये शुरुआत एकदम एकाएक हो रही है। उसकी पार्श्वभूमि क्या है? पर हमारे आचार्य गण में समझाते हैं कि जो भागवतम है वह एक स्तर ऊपर है श्रीमद् भगवद गीता के। तो भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और फिर चैतन्य चरितामृत, ये प्रगतिशील ग्रंथ है। तो जो भगवद गीता में बताया गया है कैसे अर्जुन को भक्ति करनी चाहिए, तो ऐसे बताया गया कि भगवद गीता में भगवान कौन है ये बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में भगवान क्या करते हैं ये बताया गया है, और चैतन्य चरितामृत में भगवान कैसे सोचते हैं ये बताया गया है। तो ये एक प्रगतिशील वर्णन है। तो जो भगवद गीता का ज्ञान अनुशीलन करके अर्जुन अभी कैसे कार्य करते हैं, यह झलक यहाँ पे दी जा रही है। तो आचार्यगण बताते हैं, क्योंकि दशम स्कंद बहुत दूर है, 335 अध्याय है श्रीमद् भागवतम में, और इन 335 अध्यायों में से 90 अध्याय दशम स्कंद में से है, पर वो 90 अध्याय तक पहुंचने के लिए उसके पहले लगभग 150 अध्याय है, 175 अध्याय लगभग है। तो इसीलिए 175 अध्याय भी बहुत दूर है, इसीलिए जो व्यासदेव पहले जो दशम स्कंद की एक छोटी सी झलक दे देते हैं यहाँ पे। सो सातवें अध्याय से 15वें अध्याय तक, भागवतम के जो 7वें अध्याय से 15वां अध्याय है, इसमें भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बारे में वर्णन है, और इतना वर्णन भागवतम में और कहीं भी भगवान कृष्ण के बारे में नहीं है दशम स्कंद के पहले। अभी इसके बाद में जो कृष्ण के बारे में भी डायरेक्ट वर्णन जो आएगा वह तीसरे अध्याय, तीसरे स्कंद के दूसरे और तीसरे अध्याय में एक बार आएगा, जहाँ पे विदुर और उद्धव के संवाद में भगवान कृष्ण का स्मरण हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे कभी कोई मूवी होता है तो उसका पहले ट्रेलर देते हैं, तो वैसे यहाँ पे पहले झलक दे रहे हैं इन अध्यायों में। और फिर तभी क्या हो रहा है, यहाँ पे भगवान उसी मुद्रा में है, उसी कार्य में है जो भगवद गीता में थे। वे अपने भक्त के सारथी बने हुए हैं, और सारथी बनकर वे अपने भक्त को सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और इस अध्याय का शीर्षक भी बहुत ही विचार करने योग्य है। प्रभुपाद जी इस अध्याय के शीर्षक, अध्याय को शीर्षक देते हैं कि द्रोण के पुत्र की सजा देना, द्रोण पुत्र का दंड। तो अभी द्रोण पुत्र का एक नाम भी है, तो द्रोण पुत्र का नाम क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया यहाँ पे? अश्वत्थामा का दंड क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि अगर वो अश्वत्थामा एक व्यक्ति होता तो उसको दंड देना इतना बड़ा मुश्किल नहीं होता, कोई साधारण व्यक्ति होता वो तो। उसने सोते हुए व्यक्तियों को मार डाला है तो उसको मार डालना चाहिए, पर क्योंकि वो द्रोण पुत्र है इसीलिए उसको क्या सजा देनी है इसके बारे में बड़ा विचार विमर्श करना पड़ रहा है। तो जब कोई व्यक्ति व्यक्ति कौन कोई जो भी होता है उसके जो संबंध होते हैं वो महत्वपूर्ण है, और जब व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है न केवल उसकी बदनामी होती है, वो जिस कुल में आ रहा है, जिस परिवार में आ रहा है, और अगर हम भक्त है तो अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो हम जिस परंपरा में आ रहे हैं उसकी भी बदनामी होती है। तो इसीलिए जो अश्वत्थामा का नाम न लेते हुए यहाँ पे द्रोण पुत्र का दंड ये बताया गया है, क्योंकि वो द्रोण पुत्र था इसीलिए उसको कैसे दंड देना है यह बड़ा मुश्किल था फैसला करना, और इसीलिए ये सारा अध्याय है। और अभी इसके इन श्लोकों के तात्पर्य में विश्वनाथ चक्र ठाकुर बताते हैं कि भगवान की ये आदत है कि वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा कैसे लेते हैं, भगवान सदुपदेश देते हैं, सही ज्ञान देते हैं कि कैसे कार्य करना है, और फिर उसके बाद में ऐसी परिस्थिति डालते हैं कि वो भक्त उनको उनको चुनाव करना पड़ता है कि मैं वैसे कार्य करना चाहूँ करूँगा या नहीं। तो वे बताते हैं उधार, ओ श्री ठाकुर सारे भागवतम से उधार लेते हैं। वो कहते हैं चौथे स्कंद में पृथु के सामने जब भगवान आते हैं, तो ये पृथु महाराज की कहानी बहुत रोचक है। कैसे होता है कि वो 100 यज्ञ करना चाहते हैं, और 99 यज्ञ होने के बाद उनको इंद्र व्यत्यय कर देते हैं, इंद्र रोक देते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के निवेदन पर पृथु महाराज छोड़ देते, ठीक है हम यज्ञ नहीं करेंगे, और उससे प्रसन्न हो जाते हैं वे। और ये प्रसन्न हो जाते हैं, न केवल ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते, भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते, भगवान वहां पे आ जाते हैं। और जब भगवान वहां पे आते हैं तो भगवान पूछते हैं आप कुछ वर मांगो। तो वास्तव में अभी हमें 99 यज्ञ का कुछ ज्यादा महत्व लगता नहीं है, क्योंकि हम एक भी यज्ञ नहीं करते हैं। तो अगर हम आजकल के विचारधारा से समझना है तो कोई क्रिकेटर है वो 99 पे नॉट आउट है, और तभी कैप्टन बोलते मैं डिक्लेयर करता हूँ इनिंग्स को, तो वो कितना गुस्सा हो जाएगा। भारत के इतिहास में एक बहुत विख्यात क्रिकेटर था, कुछ 94 के स्कोर पे था, और कैप्टन ने तभी डिक्लेयर कर दिया, और फिर वो क्रिकेटर इतना क्रोधित हो गया, और फिर वो क्रिकेटर वो कैप्टन उसके बाद में 4 साल तक वो साथ में टीम में थे, उनका कभी जमा नहीं। तो क्यों? क्योंकि एक ओर से किसी को कोई रिकॉर्ड कर सकता है, और वो रिकॉर्ड जब मैं कोई विशेष करने का मौका मिलता है और तभी नहीं करने को दिया जाता है तो बहुत क्रोध आता है। तो यहाँ पे जब पृथु महाराज को ब्रह्मा जी बोला कि आप ये 100वां यज्ञ मत करो, पर भगवान आ गए हैं, अब भगवान बोले वर मांगो, तभी पृथु महाराज तुरंत वर मांग सकते, मुझे 100वां यज्ञ करने दो, पर वर वो ऐसा नहीं मांगते। और चक्रवर्ती बात क्या बताते हैं कि ये जो वर मांगना है यह भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, और बता रहे हैं कि मेरे भक्त जो है कभी कुछ भौतिक चीज मांगते नहीं है। अभी वो समझ गए थे कि ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान के प्रतिनिधि है, तो ये ब्रह्मांड के मैनेजमेंट में, ब्रह्मांड के संस्थापन में जो अगर शांति बनाए रखनी है तो इंद्र को विचलित नहीं करना है। इसलिए वो क्या वर मांगते हैं भगवान से, वो कहते हैं कि मुझे सदैव आपके भक्तों के संग में रहकर आपका स्मरण ये वर दे दो। ठीक उसी तरह से जो 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज को प्रसन्न कर, प्रसाद महाराज से प्रसन्न होकर नरसिम्हदेव आते हैं, तो 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, और सुंदर प्रार्थना है। हम जानते हैं कि और कोई व्यक्ति कितना भी महान हो उनकी प्रार्थनाओं से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं, पर प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं से संतुष्ट हो जाते हैं। और फिर 10वें अध्याय में 7वें स्कंद के तभी भगवान कहते हैं कि ये मेरी लीला है, ये मेरा पास्ट टाइम है कि मैं मेरे भक्तों की इच्छा पूरा करना चाहता हूं, तो कृपया क्या इच्छा है तुम मांगो मुझे। तो प्रहलाद महाराज बोलते मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ मांगो प्रहलाद। तो मेरी एक ही इच्छा है भगवान, क्या? कि मेरे हृदय में आपसे कुछ भी मांगने की इच्छा न रहे। तो वे बोलते हैं कि इस तरह से भगवान भी अलग अलग भक्तों की परीक्षा लेते हैं, यहां तक कि वे कहते हैं कि गोपियों की भी परीक्षा लेते हैं। तो गोपियों की परीक्षा कई जगह पे होती है, तो वो कहते हैं कि जो 10वें स्कंद का 46वां 47वां अध्याय है, तो उसमें क्या होता है, उसमें 46वें अध्याय में उद्धव भगवान का संदेश लेके वृंदावन आते हैं, और 47वें अध्याय में उसको कहते हैं, उस अध्याय का शीर्षक है भ्रमर गीता, और वहां पे जो राधा रानी वो उद्धव को देखती है पर कृष्ण नहीं आए, कृष्ण छोड़ के देख के इसलिए नाराज है वो, और वो एक भ्रमर होता है जो वो भ्रमर से मानो बात कर रही है, मान लो वो कृष्ण हो या कृष्ण का प्रतिनिधि हो या कृष्ण का संदेश वाहक हो, तो वो एक तो यहाँ पे भ्रमर से बात कर रही है पर उद्धव को संबोधन कर रही है। और फिर उसके बाद में जो भगवान का संदेश है उद्धव पढ़ते हैं, सुनाते हैं, तो उस संदेश में भगवान क्या कहते हैं गोपियों को कि वास्तव में मैं जानता हूं कि तुम मुझसे विरह महसूस कर रही हो, पर मुझसे विरह असंभव है क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं, और मैं सर्वव्यापी हूं इसीलिए मैं सदैव तुम्हारे साथ में हूं, और हम तुम मेरा तुम्हारा और मुझसे विरह कभी संभव नहीं है। और यह सुन के गोपियां क्या कहती है, गोपियां कहती है वो सब ठीक है पर कृष्ण कब आने वाले हैं, वो कृष्ण कब आने वाले हैं। तो यहां पे विश्वनाथ ठाकुर बताते हैं कि भगवान देखना चाहते थे कि गोपियां तत्वज्ञान से संतुष्ट हो जाती है नहीं, तो जब वो देखते हैं कि वो कहते हैं हाँ वो सब ठीक है भगवान सर्वव्यापी पर भगवान कब आने वाले हैं, तो ये जब सुनते हैं वो तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तत्वज्ञान के स्तर पर समझना भगवान सर्वव्यापी अच्छा ऊंचा साक्षात्कार है, पर उससे ऊंचा भगवान का व्यक्तिगत रूप में संग प्राप्त करना है। और जो गोपियां वह संग की उत्कंठा व्यक्त करती है तो उससे भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं देखने के लिए कि भक्तों की भक्ति कितनी शुद्ध है, तो कितनी शुद्ध है। तो गोपियों की भक्ति शुद्ध ही थी क्योंकि वो भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहते थे, पर वो यहां तक कि भगवान का परमात्मा के रूप में या भगवान का सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में भी संग नहीं चाह रहे थे, भगवान का व्यक्तिगत भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही हमें संग चाहिए। फिर चक्रवर्ती बात बताते हैं इसी तरह से भगवान के भक्त भी दूसरे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जो गुरु होते हैं वो शिष्य की परीक्षा लेते हैं। वो कहते हैं इसका उदाहरण है कि परीक्षित महाराज की परीक्षा सुखदेव गोस्वामी लेते हैं। तो दो जगह पे है, छठे स्कंद में एक बार है और बारहवें स्कंद में है। छठे स्कंद में जब पांचवें स्कंद के अंत में नरक लोगों का वर्णन है और उसके बाद में छठे स्कंद की शुरुआत में परीक्षित महाराज पूछते हैं ये नरक लोगों से लोग कैसे बच के निकल सकते हैं। तो तभी परीक्षित महाराज के सवाल के जवाब में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर व्यक्ति प्रायश्चित कर लेगा तो फिर उससे वो पापों के प्रतिक्रिया से मुक्त हो सकता है। तो यह एक केवल प्राथमिक उत्तर है और यह महत्वपूर्ण उत्तर है, पर यह प्राथमिक उत्तर है। तो परीक्षित महाराज कहते ये सब ठीक है, पर प्रायश्चित भी करता है व्यक्ति तो भी क्या होता है, वो पाप का फल से छूट जाएगा पर वो पाप करने की वृत्ति पुनः रहेगी। तो इसीलिए कुंजर शौचवत ये कोई उचित नहीं है, ये हाथी के नहाने के समान है। और मुझे आप और ऊंचा क्या है ये बताओ, असली जवाब क्या है बताओ। और फिर यह देख के जो होता है तो उसके बाद में बताया जाता है कि कैसे के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण अगम धुन्वंति कात्स्नेन निहारमिव भास्कर। तभी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से सारे पापों का नाश हो सकता है। और कैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे कोहरा होता है तो जब ठंडी के समय कोहरा होता है तो हम उसको हाथों से पीट के चीख के चिल्ला के नहीं निकाल सकते हैं, पर जब सूर्य उग जाता है तो तुरंत निकल जाता है। ठीक उसी तरह से सारे पाप और पाप करने की प्रवृत्ति सब जब भक्ति का उगम हो जाता है, भक्ति एक सूर्य के समान है, तो सूर्य उग जाता है कोहरा चला जाता है, उसी तरह से भक्ति आ जाती है हृदय में तो सारे पाप चला जाता है। और यहाँ पे वो क्या परीक्षा लेते, तो शास्त्रों में वास्तव में तीन प्रकार के मार्ग बताए हैं, कर्म का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है और भक्ति का मार्ग है। तो यहाँ पे पहले कर्म का मार्ग बता के परीक्षित महाराज की कितनी भक्ति है इसकी जांच सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं छठे स्कंद में। और बारहवें स्कंद में जब सारा भागवतम खत्म हो जाता है तभी परीक्षित महाराज की भक्ति में कितनी श्रद्धा है यह जांचने के लिए अंत में जो चौथा और पांचवा अध्याय है बारहवें स्कंद का उसमें आत्मा का ज्ञान देते हैं सुखदेव गोस्वामी। और वो कहते हैं हे परीक्षित तुम समझ लो ये तक्षक आके तुम्हें काटेगा भी तो वास्तव में तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा ब्रह्म वास्तव में आत्मा ब्रह्म का ही आत्मा ब्रह्म एक तरह से समान है। तो तुम इस ब्रह्म पे चिंतन करके ये शरीर की यातनाओं के परे चले जाओ। और जो हम ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में देखते हैं कि आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, वो वहां पे बता रहे हैं परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी। तो हम सोचे कि अभी दशम स्कंद में भगवान की लीलाएं हो गई, रास लीला हो गई, उसके बाद में देहिनोस्मिन यथा देह क्यों बोलने की जरूरत है, उसके बाद में आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान देने की जरूरत क्या है। पर जरूरत क्या है वो देख रहे हैं कि परीक्षित महाराज की भक्ति के बारे में समझ और श्रद्धा कितनी उचित हो गई है। और उसके बाद में जो पांचवें अध्याय में बारहवें स्कंद के परीक्षित महाराज का जो की प्रतिक्रिया है वो बड़ी आदर्श है। वो परीक्षित महाराज वास्तव में शिष्य कभी अपने गुरु को डांट नहीं सकते हैं, तो पर शिष्य यहाँ पे क्या है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से आत्मज्ञान सुन के खेद व्यक्त करते हैं, बोलते हैं ये आत्मज्ञान बोलने की जरूरत क्या थी, आपने जो ज्ञान दिया है वो तो शिष्य चक्र बोलते हैं कि इसके पहले जो ज्ञान दिया है उससे मैं पूर्णतया कृतज्ञ हो गया हूँ, उससे मैं अभी मैं भगवान के स्मरण में लग जाऊंगा, भक्ति का आश्रय ले लूंगा और ये आत्मज्ञान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से यह जब सुनते हैं तो परीक्षित महाराज के मुंह से तो सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि अभी मेरा जो शिष्य है वह असली शास्त्रों का मर्म है वो समझ गया है। तो इस तरह से तो भक्तों की जब भगवान शिष्य परीक्षा ले रहे हैं तो उनकी भक्ति कितनी शुद्ध है, ये परीक्षा है। जब प्रभुपाद जब परीक्षित महाराज की परीक्षा ले रहे थे, उनकी भक्ति की समझ कितनी उचित है, कि भक्ति की सर्वश्रेष्ठता जो है वह समझ गए है कि नहीं, वह कर्म और ज्ञान की तुलना के द्वारा बताया जा रहा है। तो उसी तरह से चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि इस अध्याय में जो भागवतम की शुरुआत है उसी में भगवान अपने भक्त अर्जुन है उनके भक्ति के समझ के, उनके धर्म के सूक्ष्म सिद्धांत के समझ की परीक्षा ले रहे हैं। और परीक्षा कैसे ले रहे हैं, वे परीक्षा ले रहे हैं ये द्रौपदी के हृदय में ये अश्वत्थामा के प्रति न केवल सहानुभूति पर आदर प्रकट कर, आदर उत्पन्न करके वह भाव प्रवृत्त करके। तो वही द्रौपदी बड़ी जो इसी अध्याय के शुरुआत में आता है कि बड़ी क्रोधित हो गई थी और वो कह रही थी, उसने अपने बाल ढीले कर दिया और वो कहने लगे कि जब तक मेरे पुत्रों के हत्यारे को तुम यहाँ पे नहीं लेके आओगे तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगी। वही द्रौपदी जब अश्वत्थामा को देखती है तो फिर उसका जो भाव है पूर्ण परिवर्तित हो जाती है। और कई कारण बताती है वो, कि सबसे पहले वो बताती है कि वास्तव में ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण सदा हमारे आदर के पात्र है। और वो कहते हैं न केवल ही कोई साधारण ब्राह्मण है, यह जो ब्राह्मण है वो तुम्हारे गुरु का पुत्र है। और चक्रवर्ती पाद तात्पर्य बताते हैं कि तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये बताने का मर्म क्या है कि अभी तुम बड़े शक्ति और गौरव के साथ तुमने अश्वत्थामा को बांध के यहाँ पे ले आए हो, पर ये अश्वत्थामा को बांध कर ले आने की शक्ति तुम्हें इसी के पिता से मिली है। तो यह भाव है कि तुम इस, ये तुम्हारे गुरु है बोलने का, कि तुम अपने शक्ति से अश्वत्थामा को नहीं ले आए हो, तुम्हें जो शक्ति थी जो सामर्थ्य था धनुर्विद्या का वह तुम्हारे गुरु से मिला है। तो तुम्हारे गुरु से जो सामर्थ्य मिला है वह तुम क्या उसी गुरु के पुत्र के खिलाफ इस्तेमाल करोगे। और फिर तो सबसे पहले बताते हैं कि तो जो द्रौपदी के जो ऑब्जेक्शंस है वो जो कहता रहे हैं कि क्यों हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, अलग अलग कारण है। तो पहले बताते कि ब्राह्मण सदा हमारे आदर के पात्र है, फिर बताती है कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं, वास्तव में हमारे गुरु के पुत्र है। और फिर बताती है कि कैसे यह जो ब्राह्मण है यह अभी इसकी माँ विधवा हो गई है और अगर पुत्र भी नहीं रहेगा तो वह असहाय हो जाएगी पूरी तरह से। और फिर अभी ऐसी श्लोक आज के श्लोक में बता रहे हैं कि जो महान कुल है उसके प्रति हमें सदैव आदर रखना चाहिए। अगले श्लोक में बताया गया फिर कि वास्तव में अगर हम ऐसा आदर नहीं रखेंगे तो उसकी जो प्रतिक्रिया बड़ी भीषण होगी और उस प्रतिक्रिया से हम सबका नाश हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग कारण बता के द्रौपदी कह रही है कि हमें इसका वध नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद में अब द्रौपदी के वचन सुन के बाकी सब मान जाते हैं पर भीम नहीं मानते। भीम कहते हैं इसने तो ये केवल नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण जैसा कार्य इसने कदापि नहीं किया है। तो भीम जो है थोड़े क्रोधी प्रवृत्त के व्यक्ति है। तो वास्तव में भीम यहां तक कहते हैं कि वास्तव में द्रोण भी ब्राह्मण नहीं है, वो कहते हैं जो ब्राह्मण होता है उसको युद्ध नहीं करना चाहिए। तो तभी भीम ही नहीं सोचते कि द्रोण ने मुझे ज्ञान दिया इसलिए मैं युद्ध कर पा रहा हूं, पर सोचते ठीक है ब्राह्मण है अगर उसको शस्त्रों का ज्ञान सिखाना है तो सिखा सकता है पर शस्त्रों का ज्ञान रणभूमि में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो भीम क्रोध हो जाते हैं, यहां पर कहते हैं कि नहीं, तो कहते हैं कि हमें इसका वध नहीं करना चाहिए। और फिर भगवान अर्जुन की ओर देखते हैं, कहते हैं कि आप अभी दोनों को संतुष्ट करो, कि एक तरह से द्रौपदी है और द्रौपदी के वचनों से युधिष्ठिर नकुल सहदेव सात्यकी सब मान जाते हैं कि हाँ इसका वध नहीं करना चाहिए। भीम कहता है वध करना चाहिए। और फिर जब अर्जुन के सामने वो समस्या आती है तो अर्जुन क्या करते हैं, एक उचित उसका हल निकालते हैं। वो कहते हैं कि हमें इसके शरीर का वध नहीं करना चाहिए, इसके शरीर का वध नहीं करना चाहिए, इसलिए क्या करना चाहिए, पर इसको जो जो गलत कार्य किया है उसका दंड तो जरूर देना चाहिए। इसीलिए वो क्या करते हैं हम जानते हैं, उसके उसका जो मणि है जिससे शक्ति मिल रही है वो मणि निकाल देते हैं, और फिर उसके जो बाल है काट देते हैं, और फिर उसको चले जाने का शाप दे देते, निकाल दे उसको जाने को बोल देते हैं। और फिर भगवान भी उसको बोल देते हैं कि तुम अभी, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं रहेगी, और फिर वो चला जाता है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण भाव ये बात यह है कि जो उचित कार्य कैसे करना है उसके लिए बहुत सोच विचार करना पड़ता है, और सोच विचार करके उचित कार्य करना यह रजोगुण या तमोगुण में संभव नहीं है। इतना व्यक्ति सत्वगुण में आता है तभी संभव होता है। रजोगुण में जैसे ही वासनाएं आ जाएंगे वैसे ही व्यक्ति कार्य करने लगता है। तो अभी भगवान वास्तव में, और हमारे जीवन में भी कई बार समस्या आती है, कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर बोल देता है तो तभी मुझे क्या करना चाहिए, मैं कुछ उसकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो है कोई एक हमारे जीवन में कैसे कार्य करना है इसके लिए शास्त्र हमें मार्गदर्शन देते हैं। पर मार्गदर्शन कैसे है, वो मार्गदर्शन वह एक आदर्श दिखाते हैं, और वो आदर्श के अनुसार हमें हमारे जीवन में उचार करके फिर वो हमारे जीवन में उतारना है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसा कोई सूत्र नहीं है कि हमें ऐसा ही कार्य करना चाहिए, ऐसा ही कार्य करना चाहिए, ऐसा ही करना करना चाहिए। अलग अलग समय पे जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार हमें देखना होता है कि भगवान की सेवा सबसे उचित पद्धति से कैसे की जा सकती है, और उसके अनुसार हमें कार्य करना होता है। हम प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से कार्य किया। जैसे भारत में जो वैदिक संस्कृति अभी काफी हद तक है, कुछ हद तक तो है, और खास करके जहाँ पे भी धार्मिक कार्य होते हैं वहां पे ब्राह्मण अपनी बात, अपना जोर बहुत लगाते हैं कि ये उचित नहीं कर रहे, ये उचित नहीं कर रहे, ये ऐसे नहीं कर रहे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देशों में उन्होंने जब विग्रहों की स्थापना की तो वहां पे उन्होंने देखा कि जो सब लोग, पुरुष हो स्त्री हो, सब उत्साही है कि भगवान की भक्ति करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो माताएं हैं वो भी विग्रहों की पूजा कर सकती है। पर जब भारत में सांस्कृतिक रूप से कैसे है कि जो पुजारी होते हैं साधारण विग्रहों की पूजा करते हैं वो केवल पुरुष करते हैं। तो जब प्रभुपाद जी भारत में आए तो उन्होंने कहा कि हमें यहाँ के लोगों को ज्यादा विचलित नहीं करना है। और ये जो है भक्त सिद्धांत ठाकुर ने भी वही किया। जी भक्त सिद्धांत ठाकुर बड़े बड़े जोर से कहते थे कि जो वैष्णव होता है वास्तव में जन्म से नहीं होता है, गुण से होता है। पर जो वहां पे जो स्मार्त ब्राह्मण थे मायापुर में तो वो कहते थे कि नहीं, जो वैष्णव है वो केवल जन्म से ही होता है, और बाकी अगर कोई वो हरिनाम जप कर सकते हैं पर वो वैष्णव, वो वास्तव में वैष्णव नहीं है, वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण केवल जन्म से होता है, ब्राह्मण दीक्षा से नहीं होता है। तो भक्त सिद्धांत ठाकुर ने ब्राह्मण दीक्षा भी बहुत लोगों को दी, पर फिर भी जब वे मायापुर में विग्रहों की पूजा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमें मायापुर के जो भक्त है वो भी एक प्रकार से भक्त है, उनकी कुछ धारणाएं थोड़ी अनुचित होगी, तो उनके मन को विचलित करने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि वहां पे मायापुर में जो हमारे मंदिर में पूजा होगी वो जो ऐसे ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वैष्णव जो ब्राह्मण कुल में जन्म है वो ही उनकी पूजा करेंगे। बाकी सब भारत के मंदिरों में उन्होंने कहा कि आप सब वक्त पूजा कर सकते हैं विग्रहों की। तो क्या है, बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। राधा गोकुलनंदन भगवान की। तो न बुद्धि भेदम जने, लोगों के मन को विचलित नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे उदाहरण दे रहा था कि प्रभुपाद जी भी वो एक ही सिद्धांत है कि सबको भगवान की भक्ति का मौका देना है। तो यहाँ पे कहेंगे कि नहीं, वो मायापुर में जो ब्राह्मण जन्म नहीं किया है उनको भक्ति का मौका क्यों ना दिया जाए, उनको भगवान के विग्रहों की पूजा का मौका क्यों नहीं देना चाहिए। नहीं, उनको मौका देना चाहिए, पर उससे क्या होगा, अगर ऐसा करेंगे तो बाकी जो लोग हैं तथाकथित खुद को ब्राह्मण मानते हैं वो इतने विचलित हो जाएंगे कि वो भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, और उससे उनके भक्ति का मौका चला जाएगा। तो फिर किसको भक्ति का मौका देना है यह आचार्यगण अपने देश काल पात्र के अनुसार फैसला करते हैं। तो हमें इतने बड़े फैसले करने नहीं होते हैं, पर हमारे जीवन में हमें भी कई बार फैसला करना होता है कि अभी ऐसी परिस्थिति आ गई, इसमें कैसे कार्य करूं मैं, यह व्यक्ति ऐसा बर्ताव कर रहा है। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, पर शास्त्रों में आदर्श है, और आदर्श से प्रेरणा लेके फिर हम भगवान से प्रार्थना करके, भगवान का और भगवान के भक्तों का मार्गदर्शन लेके फिर हम फैसला कर सकते हैं। तो एक अंतिम उदाहरण के साथ मैं अंत करूंगा कि वास्तव में भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। कभी कभी परीक्षा अलग अलग प्रकार से होते हैं, कभी कभी हमारे मन में अलग अलग प्रकार से प्रलोभन आते हैं। ये जो परीक्षा मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसमें कोई भी कार्य अनैतिक नहीं था, सब अभी कर्मकांड भी उचित कार्य है। और यहाँ पे अश्वत्थामा को अगर सजा भी दी जाती है तो वह अनुचित नहीं है, पर परीक्षा क्या थी कि अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्य है, उनमें से सर्वोच्च धार्मिक कार्य कौन सा है, सबसे उचित, सबसे उत्कृष्ट धार्मिक कार्य कौन सा है। तो हमारे जीवन में कभी ऐसे प्रलोभन आता है कि कोई एक कार्य उचित है, दूसरा कार्य अनुचित है, कि काम, क्रोध, लोभ, ये सब हमें मोहित कर लेते हैं। तो जो उस समय भी है, जैसे मोह होता है हमको जब प्रलोभित हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रकार की परीक्षा है, और उस परीक्षा से निकलने के लिए हमें भगवान का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। पर वो परीक्षा क्यों आती है, वास्तव में एक तरह से देखे गए तो हमारे मन में अगर काम वासना आती है, क्रोध आता है, लोभ आता है, वह भी एक तरह से भगवान की योजना से ही आ रहा है। जो हम कुछ चित्र देख लेते हैं, कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, उससे कुछ, वो भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है एक तरह से। तो क्या भगवान हमें प्रलोभित करके हमारा पतन कराना चाहते हैं? नहीं, पर जो परीक्षा है उससे हम ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी है, वह परीक्षा दे रहा है, तो परीक्षा कभी कभी अलग अलग प्रकार की परीक्षा होती है, तो कभी कभी एक लंबा उत्तर लिखना होता है, और कभी कभी कई पर्याय होते हैं, उनमें से एक उचित पर्याय चुनना होता है। तो अभी 5 पर्याय है, उनमें से 4 पर्याय गलत है, 1 पर्याय सही है। तो अभी अगर विद्यार्थी कोई भी पर्याय अपने आप चुन लेता है, बिना पढ़ाई किए, बिना विचार किए, तो क्या होगा, अधिकांश रूप से उसके उत्तर गलत आ जाएंगे। और जब गलत उत्तर आएंगे तो फिर क्या होगा, वो कहेगा कि जब उसको फिर फेल हो गया, तो टीचर का फेल हो, तुम फेल हो गए होगा, और तुमने ही वहां पे गलत पर्याय रखे थे, तो मैंने, तुमने जो पर्याय रखे थे वही चुने मैंने, तो क्या ये तर्क उचित होगा। टीचर कहे कि हाँ, मैंने ही पर्याय रखे थे, पर वो पर्याय रखने के पहले मैंने तुमको सिखाया भी था, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया जब मैंने पढ़ाई दी। तो धृतराष्ट्र यही बोलता है, धृतराष्ट्र क्या बोलता है, जब युद्ध आता है और उसको बताया था विदुर कि अगर तुम ये युद्ध को नहीं रोकोगे तो सारे कुरु वंश का विनाश हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, अगर ये नियति की इच्छा है कि वंश का विनाश हो जाएगा, तो मैं तो एक छोटा सा जीव हूं, मैं कौन हूं नियति को रोकने वाला। तो तभी विदुर क्या कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, नियति हमारे कर्म के फल को चुनती है, हमारे कर्म को नहीं चुनती है। नियति हमारे कर्म के फल को चुनती है, कर्म को नहीं चुनती है। मतलब विद्यार्थी पढ़ाई करने के बाद भी कभी कभी मार्क्स नहीं मिलते हैं, कभी कभी जो एग्जामिनर होता है, वो एग्जामिनर उसके पत्नी से झगड़ा करके फिर पेपर चेक करने को बैठ जाता है, तो कम मार्क दे देता है, तो उसके कारण कभी उसको कम मार्क मिल जाते हैं। तो यह कर्म का फल है। पर अगर वो विद्यार्थी पढ़ाई ही नहीं करता है और बोलता है क्या है, नियति थी मेरा फेल होना, वो नियति नहीं थी, तुम्हारी मूर्खता थी। तो उसी तरह से जो टीचर अलग अलग पर्याय देते हैं, वो क्यों देते हैं, वो पर्याय इसलिए देते हैं कि वो विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ाई करे। ठीक उसी तरह से कभी कभी हमारे मन में काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, तो हमें ये नहीं सोचना कि भगवान की इच्छा है कि मैं पतित हो जाऊं, भगवान ने ये प्रलोभन भेजे, नहीं, भगवान ने प्रलोभन भेजे है कि उसके पहले हमें ज्ञान भेजा है भगवान ने, और ज्ञान के द्वारा भगवान हमारी परीक्षा कर रहे हैं कि हम क्या चुनेंगे। और अगर हम सही पर्याय चुनते हैं तो उसके द्वारा हम प्रगति करके भक्ति में अग्रशील होते हैं। तो सारांश में हमने आज चर्चा की कैसे कि ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में ये अध्याय में दशम स्कंद का एक झलक दिया जा रहा है, और फिर खास करके इस अध्याय का भाव क्या है कि कैसे भगवान परीक्षा लेते हैं, गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं। तो इसके लिए हमने पृथु महाराज, प्रहलाद महाराज, गोपियों का उदाहरण देखा, और फिर सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का कर्म और ज्ञान के संबंध में उदाहरण देखा, और फिर यहाँ पे अर्जुन कैसे इस समस्या का निवारण करते हैं, और अंत में हमारे जीवन में कैसे हमें इन आदर्शों से प्रेरणा लेकर फिर उचित चुनाव करना है, इसके बारे में चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।